एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम आज उसका वचन सुनने से पहले फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे और हमें तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे। विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन्हें तू तेरा पवित्र आत्मा से छू दे और उन्हें आशीष दे, उन्हें तेरे वचन को सुन करके तेरे नज़दीक आने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे और तेरा सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे इच्छा के अनुसार तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है उसका उपचारात्मक स्पर्श। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का वचन पढ़े जो मिलता है मत्ती 9:35 में। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, कहता है मत्ती 9:35 पद। प्यारो, जिस तरह यीशु ने जमीन की मिट्टी से आदम को गढ़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, उसी तरह उन्होंने अक्सर पीड़ाओं पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। वह हमारी जरूरत समझते थे कि हमें स्पर्श किया जाए। भले ही उन्होंने जिन लोगों को चंगा किया उन्हें शारीरिक रूप से स्पर्श ना किया हो, फिर भी उन्होंने हमेशा आत्मा को स्पर्श किया। हम उसके चंगाई देने वाले स्पर्श से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम परमेश्वर की क्षमा का उम्मीद कर सकते हैं, 1:9, और हम उसका प्रावधान का उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती 6:33 में, और हम उसकी उपस्थिति का उम्मीद कर सकते हैं 13:5 में। यीशु परम यथार्थवादी थे, हालांकि उन्होंने आज्ञाकारिता के भरपूर जीवन और आशीषों की बात की, लेकिन उन्होंने हर विश्वासी के सामने आने वाले विरोध, कष्ट और पीड़ा को कभी कम नहीं आंका। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले यीशु ने अपने शिष्यों को आगे के कठिन मार्ग की याद दिलाई। वह जानते थे कि उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है, ये लिखा गया है 16:33 में। यीशु के चेतावनी के शब्द इस वादे पर आधारित थे कि वह पवित्र आत्मा को भेजेगा जो आश्वासन और शक्ति का सदैव उपस्थित रहने वाला स्रोत होगा। शरीर और आत्मा के लिए उसका उपचारात्मक स्पर्श के विषय में हम पाते हैं मत्ती 14 का 35 और 36 पद में। सुसमाचारों में कई बार बताया गया है कि यीशु ने लोगों को चंगा करने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में शारीरिक रूप से छुआ। उनका चंगा करने वाला स्पर्श एक सुस्थापित घटना बन गया। लेकिन अगर वे निष्क्रिय रूप से उनके आने और उन्हें छूने का इंतजार करते तो कितने लोग चंगे हो पाते। चंगाई पाने के लिए बेताब लोगों की भीड़ ने चंगा करने के लिए स्पर्श करने की पहल की। लोग अपने सभी बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती की कि वह बीमारों को अपने वस्त्र के किनारे को छूने दे, और जितने ने उसे छुआ वे सब चंगे हुए। बाइबल कहती है, यह लिखा है मत्ती 14 का 35 और 36 पद में। आज प्रभु किन परिस्थितियों में चमत्कारिक चंगाई का वादा करता है? याकूब 5 का 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, हमें विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना है। क्या परमेश्वर इसलिए चंगा करता है क्योंकि हम अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं और इसलिए चंगा होने के योग्य हैं? क्या ईश्वर नास्तिक चिकित्सकों और नर्सों के काम को आशीर्वाद दे सकता है? हाँ, परमेश्वर उनके द्वारा भी काम करता है। लेकिन प्यारों, हमें याद रखना है कि सब चंगाई परमेश्वर ही की ओर से आती है। क्षमा के माध्यम से उसका उपचारात्मक स्पर्श के विषय हम पढ़ते हैं मत्ती 6 का 12 से 15 में। मत्ती 6 का 12 से 15 में हमें क्षमा के बारे में सिखाया गया है। क्या आध्यात्मिक उपचार के लिए क्षमा जरूरी है? जी हाँ, परमेश्वर अक्सर अपने उपचारात्मक स्पर्श के लिए मानव हाथ प्रदान करता है। क्या आपने उसे अपने हाथों का उपयोग करने के लिए संभव बनाया है? क्रूस पर यीशु की पुकार याद रखें, हे पिता इन्हें क्षमा कर, लूका 23 का 34। प्यारो, कोई भी घाव इतना बड़ा, इतना गहरा या इतना नुकसानदायक नहीं है कि उसे परमेश्वर की आत्मा से ठीक ना किया जा सके। चंगाई उन्हीं को मिलती है जो विश्वास करते और आज्ञा मानते हैं, यशायाह 40 का 29 से 31। दुख और परीक्षाओं में उसका उपचारात्मक स्पर्श के विषय हम पाते हैं यशायाह 53 का 4 और 5 में। क्योंकि यीशु का व्यक्तिगत दुख बहुत अधिक था, इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं कि वह हमारे दुख में हमारे साथ सहानुभूति रखता है, चाहे वह कितना भी हृदय विदारक क्यों ना हो। यीशु के उन कष्टों पर विचार करें जिनसे हमारी चंगाई संभव हुई, मत्ती 27 का 26 से 50 में हमें मिलता है। यशायाह 53 का 4 और 5 में यीशु ने बहुत दुख उठाया, और वह दुख इसलिए उठाया कि हम चंगे हो सके, हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह निष्कलंक था, फिर भी वह हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए वह इस दुनिया में दुख सहने के लिए आया था। करुणामय स्पर्श की उपचार शक्ति यीशु के एक कोढ़ी के साथ हुए अनुभव में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। करुणा से भरकर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को छुआ, मरकुस 1 का 41। फिर उन्होंने कहा, शुद्ध हो जा, और तुरंत ही कोढ़ अस्वीकृति और अलगाव के पिछले जीवन की एक जलवंत स्मृति मात्र बन गया। जब हम बीमार लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी उपस्थिति, हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब हॉलैंड पर नाजी जर्मनी का कब्जा था तो हॉलैंड की पहली महिला घड़ीसाज कोरी टेन बूम ने घड़ी की दुकान के ऊपर स्थित अपने घर को होलोकॉस्ट से भाग रहे यहूदियों के लिए एक पड़ाव में बदल दिया। फरवरी 1944 में गेस्टापो ने उन्हें पकड़ लिया। कोरी, उसकी बहन बेटसी और उसके 84 वर्षीय धर्मपरायण पिता को सेवेनिंगन जेल ले जाया गया। कोरी को एकांत कारावास में रखा गया। बचपन से ही उसे सबसे ज्यादा डर अकेले रहने और लोगों से कट जाने का था। अब वह अकेली थी, बीमार थी और उसे दूसरों से बात करने की मनाही थी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? कई साल बाद गाइड पोस्ट पत्रिका ने कोरी द्वारा अपने पिता के विश्वास का सारांश प्रकाशित किया। वर्तमान कठिनाइयां चाहे जो भी हो, बाहरी रूप चाहे जो भी हो, मेरे पिता जानते थे कि ईश्वर ही सब कुछ संभाल रहे हैं, अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। सबसे अच्छा तो अभी बाकी है। यही वादा उनके पिता हर जन्मदिन पर उन्हें देते थे। बेटसी कोरी को याद दिलाती थी, कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं होता कि ईश्वर का प्रेम उससे भी गहरा ना हो। जेल में अपने टूटे हुए दिल की निराशा में अपने परिवार के विश्वास की स्मृति और इस दृढ़ विश्वास ने कि अगर हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हम पुनर्स्थान की भलाई में भागीदार हो सकते हैं, उसे आगे बढ़ने में मदद की। कोरी ने अपने उत्पीड़कों को माफ कर दिया और जानती थी कि ईश्वर ही उसके जीवन के प्रभारी हैं। कोरी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की चिकित्सा प्राप्त की और एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया कि कैसे मसीह के माध्यम से एक व्यक्ति निराशा पर विजय पा सकता है। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, उसका प्रभु यीशु मसीह का उपचारात्मक स्पर्श हमें मिलता है। मती 9 का 27-31 में हम यह बात पा सकते हैं। मती 9 में वर्णित दो व्यक्ति यीशु के निकट आने के लिए उमड़ी भीड़ का शोर सुन सकते थे। वे दो अंधे आदमी थे और हालांकि वे यीशु को या उनके द्वारा किए जा रहे चमत्कारों को नहीं देख सकते थे, फिर भी उन्होंने विद्युत आवेशित वातावरण को महसूस किया। जब वे उस घर के अंदर पहुंचे जहां यीशु ने प्रवेश किया था, तो उनके विश्वास को फल मिला जब उन्होंने जीवन में एक बार होने वाले स्पर्श का अनुभव किया जिसने अंधेपन को दृष्टि में बदल दिया। प्यारो, दुनिया दुख, पीड़ा और निराशा से भरी है। तारों के बिना तूफानी रातें, धूप के बिना लंबे दिन। जैसे ही आप आशा की किरण की तलाश करते हैं, एक और संकट आपको जमीन पर गिरा देता है। आप क्या करते हैं? आप किस ओर रुख करते हैं? आप दुखों के दलदल से कैसे बाहर निकलते हैं? क्या ऐसे घाव हैं जो इतने गहरे हैं कि कभी भर नहीं सकते? क्या सभी दुखों का इलाज संभव है? हाँ, यीशु मसीह में। मती 11 का 28-30 में यीशु मसीह हमें बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ को हल्का करूंगा। आज भी पीड़ित लोगों के लिए हमेशा की तरह, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो, दर्द वास्तविक है। दर्द की समस्या कोई सैद्धांतिक समस्या या धर्मशास्त्र का खेल नहीं है, यह रिश्तों की समस्या है। बहुत से लोग ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं लेकिन अपने आंसुओं से आगे नहीं देख पाते। वे आहत और विश्वासघात महसूस करते हैं। जब उनके बच्चे और युवा कष्ट में होते हैं तो माता पिता एक भारी बोझ का अनुभव करते हैं। मरकुस 10 में वर्णित माताओं द्वारा अपने बच्चों को यीशु की गोद में सौंपने का मार्मिक दृश्य यीशु द्वारा उनमें से प्रत्येक को अपने व्यक्तिगत स्पर्श का आशीर्वाद प्रदान करने के साथ चरम पर पहुंचाता है। वह आज भी वह स्पर्श प्रदान करते हैं। यदि आपने शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना की है और चंगे नहीं हुए हैं तो आप उन परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं? मती 26 का 39-42-40 में हम यीशु मसीह का अनुभव को पाते हैं और रोमियो 8 का 28 में भी हमें इसका उत्तर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह दुख सहे, वह दुख के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर से, यदि हो सके तो इसे टाला जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि मनुष्य को बचाने के लिए यह दुख सहना था। और अंत में वह आखिरी में वह कहते हैं परमेश्वर से, आपकी इच्छा हो, मेरी इच्छा नहीं हो। वह और प्यारो, प्रभु यीशु मसीह वह दुख सहा ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। रोमियो 8 का 28 में कहता है, सब चीज, सब बातें उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई के लिए होता है, भलाई उत्पन्न करता है। जॉनी एरिक्सन टाडा क्वाड्रिप्लेजिक हैं, गर्दन के नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त है। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद वह ईश्वर की अच्छाई के बारे में बोलती और गाती हैं। ही विल बेयर मी ऑन एंजल्स विंग्स, उनके द्वारा रचित एक आशा का गीत है। परमेश्वर हमें अपने स्वर्गदूतों के पंखों से ले चलेंगे, वह कहती है अपना गीत में। 1967 की गर्मियों में जोनी और उसकी बहन अपने घोड़ों पर सवार होकर चेसापीक खाड़ी में तैरने गई। उसने एक तैरती हुई नाव देखी, तैरकर उसके पास पहुंची और गोता लगा दिया। पानी उथला था और उसका सिर एक चट्टान से टकरा गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह फिर कभी नहीं चल पाएगी। जोनी पूरी तरह टूट गई। वह सिसकते हुए बोली, हे ईश्वर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे बस मर जाने दो। दुर्घटना के बाद से लाखों लोग जोनी से परिचित हो चुके हैं। वह टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई देती है, एक दैनिक रेडियो प्रसारण रिकॉर्ड करती है, एक फिल्म में खुद का किरदार निभा चुकी है और अपनी जीवन कहानी जोनी लिखी है। उसकी कलाकृतियां दांतों में ब्रश पकड़कर बनाई गई कार्ड, पोस्टर और स्टेशनरी की कतारों की शोभा बढ़ाती हैं। वह हर मौके का इस्तेमाल ईश्वर की स्तुति करने के लिए करती है। पहले तो जोनी को अपनी हालत को एक प्रेममय ईश्वर में अपने विश्वास के साथ जोड़ना असंभव लगा, लेकिन एक रात जोनी को यकीन हो गया कि ईश्वर समझते हैं। एक करीबी ईसाई दोस्त ने उससे कहा, जोनी, यीशु जानते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। उन्हें लकवा मार गया था। वे क्रूस पर ना तो हिल सकते थे और ना ही अपनी स्थिति बदल सकते थे। उन्हें कीलों ने लकवा मार दिया था। यह एहसास बेहद सुकून देने वाला था। ईश्वर मेरे बेहद करीब आ गए और आखिरकार मुझे समझ आ गया कि वह मुझसे प्यार करते हैं। ईश्वर के अलावा मेरी कोई और पहचान नहीं थी और धीरे धीरे वे ही मेरे लिए काफी हो गए, जोनी ने कहा। मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना की और मुझे पूरा विश्वास था कि यह जरूर होगी। बाइबल हमारे शरीर के महिमा वाहन होने की बात करती है। बाइबल बताती है कि हमारा शरीर को परमेश्वर महिमा वाली शरीर में बदल देगा। वह कहती है, अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं बस 40-50 साल की देरी से गुजर रही हूँ और परमेश्वर उस दौरान भी मेरे साथ हैं। हम दुखी लोगों को यह समझने में कैसे मदद कर सकते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। प्यारो, हम चुनाव कर सकते हैं। हम चोट पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव कर सकते हैं या हम चंगाई देने वाले पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यीशु कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है मत्ती 11:28 में। वह हमें अपना उपचारात्मक स्पर्श प्रदान करते हैं, कई बार आंसुओं के बीच शांति प्रदान करते हैं। अगर कोई दुख को समझता है तो वह है हमारा परमेश्वर और हमारा प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर का वचन यह प्रतिज्ञा करता है, प्रकाशित वाक्य 21:4 में। प्यारो, यीशु का उपचारात्मक स्पर्श बीमार लोगों को स्वस्थ कर सकता है, यहाँ तक कि जब केवल वही जानते हैं कि किन कारणों से वह शारीरिक रूप से चंगा करने का चुनाव नहीं करते, तब भी वह आध्यात्मिक शक्ति, सहनशीलता का अनुग्रह और अपने अंतिम उपचार के पुनः आगमन की प्रतीक्षा करने का धैर्य प्रदान करते हैं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए कि वह हमें चंगा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए कि वह हमें पाप से बचाएंगे। वह आपको शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से चंगाई देने चाहता है। आप उसके पास आइए, उसमें विश्वास करिए और उसके पीछे चलिए। वह यह सब कुछ करने में सक्षम है और वह आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह शरीर एक दिन महिमामय शरीर में वह बदल देंगे। जब हम उसमें विश्वास करते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं, वह शीघ्र आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए, स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए। वह धर्मियों को अपने पास ले जाने के लिए आ रहा है। आइए हम उसकी बाट जो है, आइए हम उस दिन के लिए तैयार हों। परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तू हमसे प्रेम करता है। तू हमें चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। तू हमें पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। पिता परमेश्वर, हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए मदद कर। तेरा पवित्र आत्मा से छू दे, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला, ताकि हम तेरा राह में चल सके, तेरे पीछे चले। मेरे हर एक श्रोताओं के संग ओ पिता, तो जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं और उन्हें तेरे पीछे चलने के लिए मदद कर। हम सबों को तो आशीष दे पिता, और उन्हें तेरे राज के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुना ग्रहण कर, आमीन।
कब बुझ जाएगी ज्योति।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद में कामना करते हैं।